देवियों सज्जनों, आप सबको नमस्ते। गीता के चैप्टर 18 की चर्चा हम कर रहे थे, जो कि 16 और 17 की कंटिन्यूटी के साथ है। बोलिए मेरे साथ, निश्चयम् शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमः, त्यागो हि पुरुष व्याघ्र, त्रिविध संप्रकीर्तितः। अर्जुन का प्रश्न था कि सन्यास और त्याग में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। आंसर में कृष्ण जी अलग अलग विद्वानों के मत रखते हैं कि विद्वान लोग कैसे अलग अलग विचार रखते हैं, बाद में अपना जो भी समझ है उसके हिसाब से वो बोलते हैं कि मेरा जो निश्चय है वो आप सुनो, जो भी मैं अपने दृष्टि से जिसको सही मानता हूं कि ये जो है पुरुष व्याघ्र, पुरुषों में शेर जैसा, क्योंकि क्षत्रिय है अर्जुन, जो त्याग है वो तीन तरह का होता है, ये हमने पिछले बार डिस्कस किया था। अगला भी साथ बोलिए, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। जैसे हर काम तीन तरह के अलग अलग लोग होते हैं संसार में, और हर व्यक्ति कुछ भी करता है, हर कैटेगरी का व्यक्ति उसका जिस तरह की अपना एटीट्यूड है, जिस तरह के उसका नेचर है, तो वो कुछ भी करता है, अच्छा करता है, बुरा करता है, बच्चे का पालन पोषण करता है, नौकरी करता है, कुछ भी करता है, हर जगह उसका वो रिफ्लेक्शन आता है जिस तरह का उसका नेचर होता है। इसी तरह त्याग करने वाले व्यक्ति भी तीन तरह के होते हैं, डिपेंड ऑन अगेन देयर एटीट्यूड, उनके जो नेचर है उसके बेस पर होते हैं। पर एक चीज जो बहुत कन्फर्म्ड और पक्का है कि इन चीजों का तो त्याग किसी को भी किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए। और वो तीन चीजें क्या है, हम पहले से भी काफी चर्चा करते हैं, अरे गीता में इस पर बड़े जोर है, यज्ञ दान और तप। व्यक्ति यज्ञ का, दूसरों के भलाई के लिए जितना भी हम हेल्प करते हैं, चैरिटी करते हैं, और तपह खुद को सुधारने के लिए जो कुछ भी करते हैं, इन तीनों चीजों को किसी भी हालत में, कैसा भी सिचुएशन हो, कैसा भी एज हो, कैसे भी माइंडसेट हो, किसी भी हालत में नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि ये तीनों चीजें व्यक्ति को किसी भी हालत में प्यूरिफाई करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, उसके मन शरीर बुद्धि को अच्छा बनाने के लिए हेल्प करते हैं। बात साफ है जी, यज्ञ करने से या पूजा पाठ करने से कोई स्वर्ग या ईश्वर प्रसन्नता नहीं, ईश्वर प्रसन्न नहीं होता, अपितु ये हमारे अपने मन को शुद्ध करने में हेल्प करता है। जितना आप रिलीजियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं जेन्युइनली, अंदर से, ऊपर से मजबूरन नहीं, मजबूरी बहुत सारे तरह का होता है, बहुत सारे मजबूरी ऐसी होती है कि हमें समझ में नहीं आता है कि वो मजबूरी है। जैसे हम फैमिली ट्रेडिशन को निभाते हैं, पता लगता है ये तो ट्रेडिशन, ये मजबूरी नहीं है, पर उसमें आपकी मजबूरी है, कंपल्शन है, क्योंकि आपको गिल्टी फीलिंग होती है, ना करूं तो क्या होगा, करे तो क्या होगा, सोशल प्रेशर होता है, पेरेंट्स का प्रेशर होता है, कल्चर का प्रेशर होता है। तो अगर हम किसी तरह से डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, नोइंगली, अननोइंगली प्रेशराइज्ड होकर करते हैं, उनकी तो कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। पर अगर मैं जेन्युइनली करता हूं, मेरी अपनी श्रद्धा है, तो इससे मैं अपने आप को बदलता हूं। जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज में मैं पार्टिसिपेट करता हूं, अगर पूरी भावना के साथ करता हूं, तो उससे मेरा मन शुद्ध होता है। समस्या यही होती है कि दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोग मंदिरों में, चर्चों में, जहां भी जिसकी जो भी आस्था है जाते हैं, और अलग अलग तरह के पूजा पद्धतियां भी करते हैं, पर लोगों के जीवन में, व्यवहार में वो परिवर्तन, वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखता, क्योंकि ज्यादातर लोग किसी ना किसी कंपल्शन के कारण जाते हैं, या तो कोई डर है कि ईश्वर को ना माने या पूजा ना करे किसी को तो ये अनिष्ट होगा, कि अगर मैं पर्टिकुलर चीज को ना मानूं तो मेरा फ्यूचर खराब होगा, मरने के बाद ये खराब होगा, या लालच के कारण जाते हैं, या तो करूं ये मुझे फायदा होगा, ये फायदा होगा, इस जीवन में होगा, अगले जन्म में होगा, स्वर्ग मिलेगा, जो भी हर हर रिलीजन की जो जो व्यवस्था है, या तो लालच की मजबूरी है, या डर की मजबूरी है, या मेरे कल्चर की मजबूरी है, अगर ना करूं तो वो गिल्टी फीलिंग होती है, मेरे इतने सैकड़ों सालों से ये करते आ रहे हैं, मेरे फैमिली में, मेरे सोसाइटी में लोग फिर क्या सोचेंगे, लोग सोचे नहीं सोचे, मेरा अंदर नहीं मान रहा है क्योंकि मैं उस तरह की मेरी अपब्रिंगिंग हुई है। ये सब कंपल्शंस होते हैं और ज्यादातर लोग उसी मजबूरी के कारण करते हैं, इसीलिए उसको अंदर से कुछ उसका फायदा नहीं मिलता। जिस दिन आप उन सब बंधनों से छुटकारा पा लेंगे, आप इसीलिए करते हैं कि सचमुच आप ईश्वर से प्यार कर, प्रभु से प्यार करते हैं, इसीलिए करते हैं कि आपको अपने आप को अच्छा बनाना है, इसीलिए करते हैं कि आपकी उस पर्टिकुलर चीज में श्रद्धा है। श्रद्धा मतलब नॉट ब्लाइंड बिलीफ, यू नो व्हाट आर यू गोइंग टू डू, यू नो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दीज थिंग्स। इस नोइंग नॉलेज के साथ, विथ प्रॉपर कन्विक्शन के साथ जब करते हैं तब श्रद्धा होती है। अगर आपको कुछ पता ही नहीं है तो आपकी श्रद्धा करना न करना वो ज्यादा खतरनाक होता है। इसीलिए आप देखेंगे ज्यादातर रिलीजियस पीपुल ज्यादा फैनेटिक होते हैं, क्यों? समझ कुछ नहीं है, किसी ने कुछ बता दिया, करना है तो कर रहे हैं, इंसान को मारना पड़े तो मार भी देते हैं धर्म के नाम पर, पशुओं को मारना है तो भी मार देते हैं, बलि चढ़ा देते हैं, हमारे यहां भी चढ़ाते हैं, सब जगह चलाते हैं, क्योंकि समझ नहीं है, सिर्फ श्रद्धा है। वो श्रद्धा, वो बिलीव जिसके बैकग्राउंड में कुछ बना नहीं है वो तो फैनेटिक होते हैं, और कोई छोटा फैनेटिक है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा है, कोई खुद को टॉर्चर करता है धर्म के नाम पर, दुनिया भर के व्रत उपवास रख के, या सोसाइटी को परेशान करता है, या जानवरों को परेशान करता है। पर अगर समझ क्लियर है कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, और उस समझ के साथ जब मेरी श्रद्धा जुड़ जाती है तो वो मुझे ट्रांसफॉर्म करता है। एक ही बार जाने पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, आपके बदलाव जीवन में परिवर्तन आ जाता है। तो बड़ी बात यह है कि हम कुछ भी करें समझ जरूर रखें, अगर श्रद्धा पैदा कर सके करें तो बहुत अच्छा है जीवन को बदलने के लिए। नहीं तो वो ट्रेडिशनली हम करते जाते हैं क्योंकि सब दुनिया करती है, या कहीं से कुछ सुना, करने से फायदा है या ना करने से नुकसान है, डर या लालच के कारण। जब भी किसी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मजबूरी होती है उस कार्य में श्रद्धा नहीं होती है। जहां भी आप प्रोफेशनल लाइफ में काम करते हैं, ऑफिस में करते हैं, बिजनेस में करते हैं, जो भी जिस तरह का भी काम करते हैं, अगर आपको उसमें मजा आ रहा है तो आप न सिर्फ फाइनेंशियली और सोशियली आपको फायदा हो रहा है, आपको अंदर से भी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, आप आनंद ले रहे हैं, अब ऑफिस जाने के मजा आता है, आपको मजबूरन नहीं जाते हैं, संडे होते ही आपको चिंता नहीं सताती है कि ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है कि कल मंडे है, क्योंकि आपको मजा आता है। पर जब आप मजबूरी में करते हैं, वो मजबूरी सिर्फ क्या करें ना करें तो नहीं चलेगा, पैसा तो कमाना है, बच्चे पालने हैं, अगर मजबूरन करते हैं उसी काम को, दोनों आदमी ऑफिस में काम करते हैं पर दोनों के एटीट्यूड में अंतर होने से रिजल्ट में भी फर्क पड़ता है। अगर आपने डिसाइड किया कुछ करने के लिए, कैसी भी मजबूरी हो, देन कम से कम श्रद्धा पैदा करो तो भी आप एंजॉय कर सकते हो। जब तक आप चीजों को एंजॉय नहीं करोगे आप उसे सीखोगे भी नहीं। लोग 15-20 साल काम करने के बाद भी हटा दिए जाते हैं, क्यों? क्योंकि कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई एंजॉय नहीं करते हैं, क्योंकि एंजॉय नहीं करते हैं तो सीखते भी नहीं है, सीखते नहीं तो अपडेट भी नहीं होते हैं, क्योंकि अप टू डेट नहीं होते हैं तो कंपनी उनको बोझ समझने लगता है, 20 साल पहले तो ठीक था, अब तो आप पुराने जमाने के हो गए, नए लड़के आ गए। सीधी सी बात है, घर में भी यही समस्या होती है। जब वो अपडेट अब कब होते हैं, जब आप कुछ सीखते हैं, सीखते कब हैं? जब आपको मजा आता है, तो वो मजा अपने आप को क्रिएट करना पड़ता है। जैसे आप खाने में टेस्ट क्रिएट करते हो, अलग अलग कपड़े पहनने के ट्राई करके टेस्ट क्रिएट करते हो, इसी तरह हर चीज में, वो आपके लाइफ से रिलेटेड चीजें हो, रिलीजियस चीजें हो, स्पिरिचुअल हो, प्रोफेशनल हो, अगर आप उसमें मजा पैदा कर सको कि आप उसमें आनंद आता है, फिर आप 10 काम छोड़ के उसको करने लगोगे और आप देखेंगे आप अपडेट होते, आपके अंदर चेंजेस होता जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रोफेशनल लाइफ में आपके लाइफ में चेंजेस होता है। चेंजेस क्या होता है कि आप अपडेट होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है कि आप कितनी चीजें, नई चीजें सीख चुके हैं, कितनी चीजें कर चुके हैं, आप कैसे दूसरों के लिए लायबिलिटी होने की जगह आप उनके लिए ज्यादा वर्थी हो चुके हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हम प्रोफेशनल लाइफ में करते हैं, ज्यादातर लोग वहां भी नहीं कर पाते हैं, तो स्पिरिचुअल लाइफ में क्या करेंगे? जो इस जिंदगी को ठीक से नहीं जी सकता, वो अगला जिंदगी भी क्या जिएगा बेचारा। पर जिसको ये समझ आ गया है, मैं कहीं भी हूं, अपने रिलेशनशिप को मैं सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अपडेट करूं, बहुत सारे जगह रिलेशनशिप में यही प्रॉब्लम है। हर कोई शादी करता है बैचलर होने के बाद, तो नेचुरली बैचलर के समय माइंडसेट कुछ अलग होता है, अलग सोच होता है, समझ होता है। पर पहली बार जब आप मिलते हैं अपने स्पाउस से, पति या पत्नी से, तो आपको एडजस्ट करने में टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है, पत्नी कैसी है, पत्नी के लिए पति कैसा है। वो शादी से पहले तो वो दिल्ली का लड्डू जो खाया वो भी अच्छे, जो दूर का पर्वत तो सबको सुहावना लगता है, और बाद में पता लगता है कि भाई उसमें भी कितने सारे कांटे होते हैं। फिर आपको धीरे धीरे उस कांटों को आदत बनानी पड़ती है। जो जितना जो स्मार्ट होता है वो उतना जल्दी उन सब चीजों को एक्सेप्ट करना लग जाता है, अपडेट, इसी को कहते हैं आप अपडेट हो जाते हैं। लाइफ में भी, रिलेशनशिप में भी आप अपडेट होते हैं। शादी से पहले जैसा थे अब आप वैसा नहीं है, अब काफी अपने आप को चेंज कर चुके हैं। प्रॉब्लम कहां होता है कि मैं तो, मेरे मां बाप ने तो मुझे ऐसे बनाया था या बनाए थे, तुम्हारे पास आकर के मुझे ये सब करना पड़ रहा है, वो भी वही सेम डायलॉग रटता है। प्रॉब्लम है कि जब दो, एक प्रॉब्लम है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला अपने आप को ठीक करे, चेंज करे। ऐसा कोई है पति या पत्नी जिसको मां बाप ने पाला ना हो? पर एक तरफ कोई कह देते हैं मेरे बाप अपने मुझे ऐसे पाला था, यहां आकर ऐसे होना पड़ा, भाई ऐसे होना पड़ा तुम्हारे साथ। प्रॉब्लम कहां आता है? जब मैं चाहता हूं सामने वाला चेंज हो जाए, मैं तो 15 साल के समय जैसा था, 20 साल के समय जैसा था या थी, 40 साल में भी मैं वैसा ही रहना चाहता हूं या चाहती हूं, अब मुश्किल है, तब लड़ाइयां शुरू होती है। तो स्मार्ट कौन है? जो उसके हिसाब से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है, चेंज करता है। तो लाइफ में वो रिलेशनशिप हो, प्रोफेशन हो, या धर्म या अध्यात्म हो, अगर उसमें आप अपडेट नहीं हो पाते, अगर आपके अंदर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो आप सिर्फ मजबूरी में रिलेशनशिप निभा रहे हो, मजबूरी में काम कर रहे हो, मजबूरी में हवन कर रहे हो, मजबूरी में तपस्या कर रहे हो, मजबूरी में कर रहे हो, क्योंकि मजबूरी कभी कभी आपको समझ में नहीं आता है कि मजबूरी है, इसीलिए आप में कोई बदलाव नहीं दिखता है, कोई सुधार नहीं दिखता, कोई करेक्शन नहीं दिखता। इसलिए बड़ी जरूरी है कि जो करें उथ अवेयरनेस करें, समझ के साथ करें, अपने आप को उसके हिसाब से ढलें, उसके प्रति प्यार पैदा करें, फिर आप देखें आपको जैसे ही मजा आने लगेगा आप खुद को बदलने लगोगे। धर्म, यज्ञ, तपह और दान ये भी ऐसे ही चीजें हैं। अगर इनको ये है बनाए गए, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए ये व्यवस्था इसीलिए की कि व्यक्ति को अच्छा बनाने के लिए ये सब हेल्प करें, अच्छा बनाने के लिए और ऊपर उठाने के लिए भी। पर इससे अगर हम ऊपर नहीं उठ रहे, मैं बहुत लोगों का हेल्प करता हूं पर आज भी लोग मुझे पसंद नहीं करते, आज भी मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है, मैं दुखी रहता हूं, इसका मतलब मेरे देने में, मेरे डोनेशन में, चैरिटी में करते समय मेरे एटीट्यूड में कुछ प्रॉब्लम है, या तो मैं बड़े अहम के साथ करता हूं कि मैं बड़ा हूं, मैं दूसरों को हेल्प करता हूं। इसी तरह इतने सालों से मैं भगवान की पूजा पाठ करता हूं, हवन करता हूं, पर मेरे अंदर कोई अच्छाइयां नहीं डेवलप हो रही है, तो कहीं गड़बड़ी है। मैं तपस्या करता हूं, तपस्या के खुद को सुधारने के लिए, अच्छा बनाने के लिए जो भी प्रक्रिया है वो क्या, पहले भी बताया, द पेयर ऑफ अपोजिट्स, तपह द्वंद्व सहनम, अच्छा या बुरा दोनों को सहने की आदत डालना, निंदा हो प्रशंसा हो, मुश्किल है पर आदत डालें। जो आज भी जो अच्छे जेन्युइन साधु सन्यासी हैं या पुराने जन्मान के ऋषि मुनि लोग, ये उनकी सिस्टम होता था पहले गुरुकुल सिस्टम में, जब गुरुकुल हुआ करते थे और जो सन्यासी जेन्युइन सन्यासी होते थे तो उनके लिए रूल होता था क्या कि सन्यासी और ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी का मतलब जो स्टूडेंट लाइफ में रहता है वो भिक्षा करता है, भीख मांगते हैं, और रूल क्या है, 3 दिन से एक गांव में ज्यादा दिन तक भिक्षा मांगने नहीं जा सकते, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन जाएंगे एक साल में, और किसी पर्टिकुलर घर में या व्यक्ति से 3 बार से ज्यादा भीख नहीं मांग सकते, और जिंदगी उनको भिक्षा मांगकर ही गुजारा करनी होगी। इसीलिए नहीं कि उनको भिखारी बनानी थी, इसीलिए कि वो जो तपस्या जो है, निंदा और प्रशंसा सहने की आदत, वो उसका वानप वो लेशन था एक सन्यासी के लिए भी, कि आपके घर में शाम को क्या है सुबह नहीं मिलना चाहिए, सुबह क्या खाएंगे वो शाम को आपके घर में नहीं दिखना, अपरिग्रह इसी को कहते थे। क्यों 3 दिन से ज्यादा एक गांव में नहीं जाएंगे, क्यों 3 बार से ज्यादा एक फैमिली में नहीं मांगेंगे, क्योंकि धीरे धीरे आपका परिचय हो जाएगा, अनजानपन नहीं रहेगा, जैसे ही परिचय होने लगेगा फिर आप फिर एक दूसरे को अब जान गए, पता है ब्रह्मचारी जी आएंगे भिक्षा मांगने के लिए, आप भी रखा है बड़े सम्मान के साथ देने लगेंगे, आपको पता है सन्यासी जी आएंगे भिक्षा मांगने के लिए, आप तैयार बैठे हो। पर जब आप नए घर में जाते हो, अनजान जगह पर जाते हो, तो सारे लोग एक तरह के नहीं होते हैं, कोई बड़ा खराब होते हैं, कोई बदतमीजी करते हैं, कोई प्यार से देते हैं, कोई इग्नोर करते हैं, आप ह्यूमिलिएटेड होते हो। वो जो ह्यूमिलिएटेड होने की प्रैक्टिस करना तपस्या है, कि आप इतना प्रैक्टिस कर लो कि जब आप रियल लाइफ में जाओ कोई आपको सचमुच ह्यूमिलिएट करे तो आपको फर्क ना पड़े। हमारी हालत तो ऐसी है कि बातचीत में भी किसी के मुंह से कुछ निकल जाता है बिना समझे मुंह से, तो भी उसको हम 8 दिन तक वो गाय जैसे जुगाली करता है ना, जुगाली जानते हैं, मतलब घास खाया फिर घर में आकर के पूरे 12-24 घंटे तक उसको उल्टी करके फिर चबाता रहता है, तो फिर हम उस बात को जुगाली करते रहते हैं, क्या बोला, हर पूरे सेंटेंस को लेते हैं, एक एक टुकड़े की व्याख्या करते हैं, उसकी अक्षर की व्याख्या करते हैं, और हफ्तों तक, कभी कभी जब बहुत काम कम हो तो महीनों तक फिर हम उसको जुगाली करते हैं, कितना मैं ह्यूमिलिएटेड हुआ, उसने उस दिन पार्टी में जो मुझे बोला इनडायरेक्टली, इसका ये मतलब निकलता है, उसने ऐसा मतलब से नहीं बोला पर मैं निकाला, क्योंकि मुझे फील हुआ कि उसने मुझे टोंट किया, ह्यूमिलिएट किया, और ये मैं खुद अपने पूरे घंटों लगा लगा करके इसकी इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश की और दुखी रहने की कोशिश की। अननेसेसरी ह्यूमिलिएटेड फील करते हैं क्योंकि वो तपस्या नहीं है। हमारे पीछे एक बड़ा सुंदर यज्ञशाला है, मुझे 6 साल हो गया मुश्किल से वहां यज्ञ हुआ, क्यों, गर्मी गर्मी का मौसम है, गर्मी लग जाएगी लोगों को, ठंड का मौसम है जी ठंड लग जाएगा, बॉडी इतना को हमने सुकुमार बना दिया है कि 2 घंटे धूप में बैठना चाहिए। और तपस्या क्या है कि धूप को भी सहो, ठंड को भी सहो, निंदा को भी सहो, प्रशंसा को भी सहो, अच्छा खाना बुरा खाना दोनों को सहो। क्यों? क्योंकि आपको अगर स्ट्रांग बनना है मेंटली, इंटेलेक्चुअली, फिजिकली, आपको ये सब करना पड़ेगा। जब आप करते हैं तो आप किसी भी सिचुएशन में फिर दुखी नहीं होते, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते। तो थोड़ा थोड़ा एयर कंडीशन्ड लाइफ से भी दूर जाना चाहिए, बॉडी को थोड़ा उसके साथ आदत डलवानी चाहिए, नेचर के साथ। अब नहीं है तो बहुत कुछ चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है हमें। इसी तरह अच्छा बुरा, निंदा प्रशंसा, इन सब चीजों को सहने ये आसान नहीं है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो सब बड़ा आसान काम है, आप लोगों ने नहीं किया तो बड़े पापी हो गए और मैं करता, ऐसा नहीं, मैं भी आपके साथ हूं। तो हम सब एक ही फैमिली के होते हैं, पर जितना हम उसमें से कर सकें, कोशिश कर सकें, उतना हमारे अपना ट्रांसफॉर्मेशन अंदर होता है। इसीलिए कहा यज्ञ दान तप, इन तीनों को कभी नहीं छोड़ना लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आए, क्योंकि ये तुम्हें हमें सुधारने के लिए, पावनानी मनीषीणा, ज्ञानी लोगों के लिए ये प्यूरिफायर है, वो उनको शुद्ध करने का साधन है। ज्ञानियों के लिए इसलिए बोला, जो अज्ञानी है उसको समझ में नहीं आएगा, ये बकवास लगेगा, वो छोड़ देगा। जब आपकी समझदारी बढ़ेगी, स्मार्टनेस बढ़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा ये कितना हेल्पफुल होते हैं। बिल्कुल वैसे ही बच्चों को आप कितना समझा दो, कुछ बच्चों को, आजकल बच्चे भी हमसे समझदार हो गए, मीठा कम खाओ, ये कैंडीज मत खाओ, तो बहुत बच्चे परेशान नहीं मानते हैं, रिवोल्ट करते हैं। आजकल बच्चे भी बहुत कुछ समझदार हो गए हैं, पर जब वो खुद समझदारी लेते हैं, जब बड़े हो जाते हैं, फिर वो अपनाने लग जाते हैं। वैसे तो बच्चों की बात क्या कहें, बड़े लोग भी कौन से कम है, वो तो खाने पीने के मामले भी वो भी बड़े हट्टी होते हैं, बहुत सारे बीमार होने के बावजूद भी छुपाकर खा लेते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते, तो दैट्स डिफरेंट थिंग। तो इसीलिए यज्ञ दान तप, ज्ञानी लोग समझते हैं कि ये उनको अच्छा बनाने के लिए है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को एक करने की है, छोड़ने का नहीं है। आगे चलिए, एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। मेरा मानना है पार्थ, पृथा का पुत्र, पृथा कहते हैं कुंती को, कुंती के पुत्र है, अर्जुन को एड्रेस करते हैं सन ऑफ पृथा, इवन दोज दीज एक्शंस हैव टू बी अंडरटेकन बाय रिनाउंसिंग अटैचमेंट एंड हैंकरिंग फॉर रिजल्ट्स, दिस इज माय फॉर्म एंड बेस्ट कंक्लूजन। तो ये कर्म छोड़ना नहीं, करना है। अगर आपको सन्यासी के रास्ते पर चलना है, सन्यास का भाव लेना, जब गीता या कोई ग्रंथ आपको सन्यासी करने के लिए बात करता है, डरिए मत, वो आपको घर परिवार छोड़ के भगवा पहनने की बात नहीं करता है। वो सिर्फ कहता है आपको मेंटली जो जो एटीट्यूड है उसको चेंज करने का नाम। अगर आप चेंज कर लेते हैं तो आप सन्यासी हैं, नहीं करते हैं तो आम आदमी है। एतान्यपि तु कर्माणि, इन सब कर्मों को और बाकी जो भी कर्म है, अगर अटैचमेंट छोड़ के करते हो और उसका जो रिवर्ड्स है उसके प्रति आपके अंदर कोई हैंकरिंग नहीं है, कोई लालसा नहीं है, कर्तव्य भाव के करते हो, दैट इज द बेस्ट वे टू रिनाउंस समथिंग। डोंट रिनाउंस योर एक्शंस, अपने कर्मों को मत छोड़ो। कर्मों को करते हुए अटैचमेंट छोड़ दो और उसका क्या रिवर्ड्स मिलेगा उसके बारे में बार बार सोचना बंद कर दो। कर्मों को करते हुए अटैचमेंट कैसे छोड़े? अटैचमेंट का सिंपल मतलब है कि मत सोचा करो कि ये मैं कर रहा हूं, मेरा है, मेरे से रिलेटेड है। फिर भी डरने की जरूरत नहीं, अगर आप घर बना रहे हैं और अंदर ऐसा कल्टीवेट कर रहे हैं कि ये मेरा नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं, तो पड़ोसी कब्जा नहीं करेगा, ऑफिशियली कागजात में तो आपका ही नाम रहेगा। पर अगर अंदर से आप मेंटली, क्योंकि हमारे शास्त्र और पूर्वज भी बड़े समझदार थे, वो सिर्फ खोखले आइडियलिज्म की बात नहीं करते थे, बहुत प्रैक्टिकल दुनियादारी को समझ के बात करते थे। जो जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशंस चीजें फॉलो करना है, यू हैव टू डू इट। ऐसा ना हो कि आप अच्छे बनने के चक्कर में आप चोरों को बढ़ावा दे रहे, ऐसा कोई शास्त्र या पूर्वज आपको नहीं कह रहे। घर आप ही बनाएंगे, आप ही रहेंगे, आपके परिवार वाले रहेंगे, वो आपके ही नाम पर रहेगा। पर मेंटली अटैचमेंट को कल्टीवेट करो, डिटैचमेंट को कल्टीवेट करो। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ उसका है, मैं सिर्फ निमित्त हूं। जब गृह प्रवेश संस्कार होता है, जो पहला संस्कार जब वो एंटर करते हैं पति पत्नी घर में, तो वो एक दरवाजे के बाहर खड़े होकर के पूछते हैं, हे ब्राह्मण किम अहम अंतः प्रविशामि, क्या हवा हम अंदर घुस आए? तो पुरोहित कहते हैं कि वरम भवान प्रविशतु, प्लीज एंटर दिस हाउस, और ये घर आपके लिए शुभ हो। परमिशन क्यों मांगते हैं भाई? घर अपना है, बनाया खुद है, रिचुअल क्यों बनाया गया कि आपको परमिशन लेकर अंदर घुसना है? मेरा घर, आप कहेंगे मेरा घर, मैं अपनी मर्जी से घुसूं? पृष्ठ कौन होता है पूछने वाला कि आप बोलो कि पूछ के आओ इस घर में, मुझे पूछ के आओ। जस्ट टू कल्टीवेट द सेम फीलिंग कि ये सब ईश्वर का है। तुम जिस घर को बना रहे हो, रहोगे कितने साल रहोगे? तुम्हारा उम्र ही ज्यादा से ज्यादा 100 साल है, 100 साल के आसपास है, 5-10 साल आगे, 5-10 साल पीछे। पर ये जो जमीन जिसको मैं अपना ओनरशिप दावा करता हूं, ये तो यहां करोड़ों करोड़ों साल से है, जब से ये अर्थ प्लैनेट है तब से ये जमीन है। मेरे से पहले मिलियंस ऑफ पीपल आए, ओनरशिप की दावा किया, ऑफिशियली कागज भी बनाया, नेम प्लेट भी लगाया, रहे। कुछ लोग आराम से रहे, कुछ लोग मार्केट पकड़ कब्जा किया, कुछ लोगों ने चीटिंग करके कब्जा किया, को मेहनत करके कमा के लिया, जैसा भी अच्छा बुरा तरीके से ओनरशिप तो लिया इसी लैंड का, पीस ऑफ लैंड का, गए। और हमारे बाद भी लाखों करोड़ों आएंगे, उनका भी नेम प्लेट लगा मिलेगा, वो भी जाएंगे। बट द पीस ऑफ लैंड वॉज देयर एंड विल बी देयर ओन्ड बाय द रियल ओनर। और वो कभी दावा नहीं करता है कि ये मेरा है, वो डिटैच्ड किस फीलिंग के साथ है, वो ईश्वर, वो कभी नहीं दावा करता है कि ये सब मेरा है। पर सचमुच ये हमारा नहीं है, हम सिर्फ कंज्यूमर है। वॉलमार्ट में जाएं, पैसा कमाए, खर्च करिए, जितना खाना है जितना लेना है लीजिए, पर ये दावा नहीं कर सकते कि वॉलमार्ट आपका है, ये सामान आपका है। आप कंज्यूमर है, कंज्यूम करिए, जिसकी जितनी एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, सामर्थ्य है, वो उतना कमा सकता है, उतना खा सकता है, उतना एंजॉय कर सकता है। कंज्यूमर होकर के जिएंगे तो डिटैचमेंट की भाव रहेगा, ओनर होकर जिएंगे कंज्यूम तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बड़े से घर में 2 लोग रहते हैं, यूज तो एक ही रूम करते हैं ज्यादा से ज्यादा, बाकी सब पड़ा रहता है, बस ओनरशिप की खाते रहते हैं। मैं मालिक हूं इतने बड़े घर का, हो सकता है 20 गाड़ियां हो, गाड़ी तो गाड़ी यूज करना होता है, हो सकता है बहुत सारे यूज भी नहीं कर पाते, बॉडी साथ नहीं देता है, उम्र हो चुका है, खाना भी बढ़िया से नहीं खा पाते। अब तो सलाड में ज्यादा गुजारा करते हैं, घी देखे हुए 15 साल हो गया, पिज्जा तो गलती से खा भी लेते हैं, 3 दिन तक टेंशन रहता है कुछ ना हो जाए, पर ओनरशिप के साथ जी जाते हैं, सब मेरा है। भोग नहीं पाता हूं, पर ओनरशिप की दर्द के साथ जीता हूं। तो अच्छा है कि आप कंज्यूमर बन के जिए इंस्टेड ऑफ ओनर, तो आप बहुत कुछ एंजॉय कर सकते हैं इस लाइफ को भी और अगले लाइफ के लिए भी। जैसे ही आपने ओनरशिप छोड़ा, अगेन मैं ऑफिशियली नहीं कह रहा हूं, आप डरने की जरूरत नहीं है, अंदर से छोड़ा, भाव पैदा किया, तो आप एक दूसरा व्यक्ति बन गए, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। दैट इज कॉल्ड डिटैचमेंट। लोग तो 10 साल ऑफिस में भी काम करते हैं, वहां अटैच इतने हो जाते हैं, ऑफिस में मैनेजमेंट चेंज हो जाता है, कुछ चेंज हो जाता है, हम घर में दुखी हो जाते हैं। काम करने जाते हो, पैसा कमाने जाते हो, काम को एंजॉय करो, पैसा लो, घर आओ, नहीं, वहां भी अटैच्ड हो जाते हैं, वहां भी पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं। हमारी अटैचमेंट हर इंसान की एक नेचर है और वो हमें परेशान करता है। और जो व्यक्ति जितना ज्यादा डिटैच्ड होता जाएगा, तो कुछ भी काम करे, वो बिजनेसमैन बने, पॉलिटिशियन बने, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसा भी काम करे, वो अंदर अंदर उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता जाता है उस प्रभु को पाने के लिए। इसलिए कृष्ण कहते हैं डिटैच्ड होकर के अगर आप जीत काम करते हो, और जैसे ही आप डिटैच्ड होने लगेंगे ना, आप काम को एंजॉय करेंगे, फल जो मिलेगा हु केयर्स। और जब आप कहेंगे हु केयर्स, इसका अर्थ नहीं कि फल नहीं मिलने वाला, फल उतना ही मिलेगा जितना आप एक्सपेक्ट करते थे। अब आप एक्सपेक्ट नहीं करते तो भी उतना ही रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट आपके फीलिंग पर बेस्ड होकर नहीं मिलता, जो आप काम करते हैं उस काम के बेसिस पर रिजल्ट मिलता है। पर काम किस एटीट्यूड के साथ करते हैं, उसका आपका फीलिंग, आपकी सुख या दुख डिसाइड होता है। इसीलिए फलों के प्रति वो हैंकरिंग छोड़ के डिटैच्ड भाव से जब आप काम करते हैं, तो आप ऊपर पहुंच जाते हैं, वो है उत्तम स्थिति। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणोनुपपद्यते मोहात्तस्य परित्याग तामसः परिकीर्तितः। ओवरऑल एक जनरल आइडिया दिया कि यज्ञ दान तप को नहीं छोड़ना, बाकी चीजों को छोड़ना है छोड़ सकते हो, पर छोड़ने से अच्छा है कि आप सिर्फ डिटैचमेंट की कल्टीवेट करो, और उसका फल क्या मिलेगा उसके पीछे भागना बंद कर दो मेंटली, तो आपका जो त्याग है वो बेस्ट त्याग होगा। फिर अगेन, क्योंकि हर तरह के लोग होते और उन सब लोगों को तीन तरह से डिवाइड किया, अच्छे बुरे मीडियम, इनको नाम दिया सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। पर जो तमोगुणी है, जो लोअर कैटेगरी के व्यक्ति है, वो उस त्याग को किस तरह करते हैं, जब वो सन्यासी बनते हैं, मैं रिनाउंस करते हैं, सोचते हैं कि मैं सब छोड़ रहा हूं, मुझे इनसे अब कोई मतलब नहीं, उसका क्या, किस तरह का माइंडसेट होता है बताते हैं। नियतस्य तो सन्यास कर्मणो नोपपद्यते, वो छोड़ने के नाम पर कि अब संसार से मेरा अब कोई मतलब नहीं, वो क्या छोड़ते, नियत कर्म को छोड़ देते हैं। ये नियत कर्म लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हर व्यक्ति के जितने भी कर्म है उसको चार तरह से डिवाइड किया। एक होता है नित्य कर्म, या जिसको नियत कर्म कहते हैं, डेली ओब्लिगेटरी ड्यूटीज, जिसको करने से कोई फायदा नहीं है पर अगर ना करें नुकसान है, जैसे आप नहाते हैं, ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं, ये सब चीजें, एक्सरसाइज करते हैं, इनको ना करने से नुकसान है, करने से फायदा नहीं, आप साउंड हेल्थ रहेंगे। नैमित्तिक कर्म जो ऑकेजनली जो ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज है, कभी जरूरत पड़ता है, जब जरूरत पड़ती है तब करते हैं, वैसे नहीं करते हैं। काम्य कर्म जो हम किसी इच्छा, कुछ पाने की इच्छा से जो हम काम करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, और कोई रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप में भी आपको नित्य नैमित्तिक और ये काम्य होगा। कुछ रिलेशनशिप इसीलिए होते हैं कि हमें इच्छा है कि भाई इससे रिलेशनशिप रखें तो कुछ फायदा मिलेगा। कुछ रिलेशनशिप नेचुरली जेन्युइन होते हैं, कुछ रिलेशनशिप अकस्मात बन जाते हैं, इंसिडेंटली बन जाते हैं, अब आते हैं, मिलते जुलते हैं, धीरे धीरे रिलेशनशिप बन जाता है। कुछ डिलिबरेटली रिलेशनशिप बनाया जाता है कि इससे कुछ फ्यूचर में प्रोफेशनली या कुछ दूसरे तरह का फायदा मिले। कर्मों में भी इसी तरह, इसको कहते हैं काम्य कर्म। चौथा है निषिद्ध कर्म, जो फॉरबिडन है, जिसको करना ही नहीं चाहिए। वो सब हम जो जो चीजें हम अपने बच्चों को व स्टूडेंट्स को मना करते हैं, या हम जैसे लोग आम लोगों को मना करते हैं, खुद करते नहीं करते अलग बात है, वो सब निषिद्ध कर्म है। भाई झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, गुस्सा नहीं करना वगैरह, ये सब निषिद्ध कर्म है। तो इस बारे में तो कोई डिबेट ही नहीं है। डिबेट है कि नित्य नैमित्तिक का जो काम्य कर्म, उसमें जो नित्य कर्म है वो सबको करने की जरूरत है। और हमारे शास्त्रों में कहा कि हर व्यक्ति को, बाकी जो डे टू डे लाइफ में आपको जो वो नित्य कर्म तो बहुत है, ये पांच चीजें नित्य कर्म है, इनको आप किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते। और उसका नाम दिया पंच महायज्ञ। यज्ञ तो आप जानते हैं, हवन करना, यहां भी हवन होता है। हवन के तीन मीनिंग होते हैं, दान, देव पूजा, संगतिकरण। जहां आप कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ ऑफर करते हैं, कुछ अपना त्याग करते हैं। देव पूजा, जहां आप अपने से बड़ों को, जो रेस्पेक्टेबल एडोरेबल है, उनको एडोर करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। तीसरा दान, संगतिकरण, जहां कोई यूनिटी का कुछ है, जहां आप एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इवन जो आप हवन करते, यहां आप घी सामग्री समिधा वगैरह दान करते हैं, उसमें डोनेट डालते हैं, अपने आप को प्रभु से जोड़ने की कोशिश करते हैं। जो अग्निहोत्र हम करते हैं, ये देव यज्ञ है, नेचर को प्यूरिफाई करने के लिए हम हेल्प करते हैं। और ये यज्ञ मिलकर होता है, एक से अधिक लोग मिलकर करते हैं, कम से कम घर में भी करे, पति पत्नी जोड़ा होना जरूरी होता है। अग्निहोत्र को छोड़कर, अग्निहोत्र तो कोई भी कर सकता है, ब्रह्मचारी से सन्यासी तक, पर जो यज्ञ होते हैं बड़े, ये वो हमेशा कपल ही करते हैं। तो लाइफ में जहां जहां कुछ कंट्रीब्यूट, आप कुछ त्याग करते हैं, कुछ सैक्रिफाइस करते हैं, और जहां भी आप किसी को एडोर करते हैं, और जहां भी मिलने की प्रक्रिया होती है, मिलते हैं, वो सब काम अगर तीनों एक साथ कहीं घटता है, वो सब यज्ञ है। और बोला ये पांच जो तुम्हारे नित्य कर्म है, यू हैव टू डू इट एवरी डे, एंड एवरीवन शुड डू इट। कोई भी सिचुएशन हो, टाइम हो, सबको करने की जरूरत है। वो पांच कर्मों को बोला ये महायज्ञ है, सबसे बड़े यज्ञ है। कौन? ब्रह्म यज्ञ, ईश्वर की भक्ति करना, जिसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं संध्या करना। सुबह और शाम, सूरज उगने से पहले, सूरज अस्त होने से पहले, मन को शांत करके विधिपूर्वक, जो शास्त्रीय विधि है जिसको हम संध्या कहते हैं। संध्या का अर्थ होता है अच्छी तरह, सम्यक प्रकार से अपने आप को धी जोड़ना, ईश्वर के साथ जोड़ने की कोशिश करना। अगर विधि नहीं पता, अपने आप को कुछ प्रार्थना करो, मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, ईश्वर से अपने आप को सरेंडर करने की कोशिश करो प्रभु के साथ, दैट इज कॉल्ड संध्या। और सब और एक इंटरेस्टिंग बात है नित्य कर्मों में, ब्रह्म यज्ञ में, स्वाध्याय करना, रोज कुछ ना कुछ पढ़ो। और क्या, वो टाइम्स मैगजीन की बात नहीं कर रहा है, वो सत्शास्त्राणाम अध्ययनम, ऐसे ग्रंथ पढ़ो, ऐसे चीजें पढ़ो जिससे अपने बारे में समझने के लिए रास्ता मिले, अपने खुद को, मैं क्या हूं, मेरा अंदर क्या है, मैं कहां से आया, मरने के बाद कहां जाऊंगा, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, लाइफ क्या है, इन चीजों को समझने की शास्त्र को पढ़ते पढ़ना, ये पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, ये नित्य कर्म है। दूसरा कहा देव यज्ञ, प्रकृति के साथ, नेचर के साथ अपने आप को जोड़ना, जो अग्निहोत्र आप अग्नि में आहुति देते हैं। तीसरा कहा पितृ यज्ञ, माता पिता या ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स, उनकी सेवा करना जीते जी, मरने के बाद नहीं, जीते जी उनको रिस्पेक्ट देना, उनको फील कराना कि दे आर रिस्पेक्टेड, उनको उनका सेवा करना, उनका ख्याल रखना, उनको अच्छा फील कराना, ये पितृ यज्ञ है। फिर कहा कि अतिथि यज्ञ, बाकी जो इंसान बच गए, घर में कोई अचानक पहुंच जाता है अतिथि बनके, कोई भी हो, उसका ख्याल रखना, सत्कार रखना करना, या नहीं भी आता है, आप किसी ऑर्फनेज में या और कहीं जाते हैं, सेवा उनको कुछ चैरिटी करते हैं, हेल्प करते हैं, वो सब अतिथि यज्ञ, मनुष्य यज्ञ भी कहते हैं। बोला पांचवा भूत यज्ञ, प्राणी मात्र के प्रति कुछ करना, सारे दुनिया का नहीं, तुम्हारे आसपास में पक्षी है, पशु है, चिड़िया है, उनके लिए कुछ खाना दो, उनके लिए अपना घोंसला बनाओ, उनकी ख्याल रखो। और ये पांचों को कहा ये महायज्ञ है, वैसे हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, और इन पांच यज्ञों को नित्य कर्म कहा, और इन नित्य कर्मों को छोड़ना नहीं चाहिए, पर जो दुष्ट व्यक्ति है वो छोड़ने के नाम पर सबसे पहले इन्हीं पांचों को छोड़ देता है कि भाई मैं तो अब सब काम छोड़ छाड़ दिया हूं। क्या छोड़ दिया? बीवी बच्चे पालना छोड़ दिया, मां बाप की सेवा छोड़ दिया, पूजा सब छोड़ दिया, अब मैं फकीर हो गया। कितने ये तमोगुणी लोअर स्टैंडर्ड का व्यक्ति त्याग करने के चक्कर में जो करने लायक चीजें उन्हीं को छोड़ दिया, जो नहीं छोड़ने, जो छोड़ने लायक चीजें उनको नहीं छोड़ा, वो हम नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे। समय हो चुका है, आगे और भी बहुत सारी बातें चर्चा करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।